फिर इसी तरह आप देखिए कि औलाद या बच्चे बेटे कैसे रुसवाई का जरिया बनते हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिए। अव्वल तो औलाद का होना ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। फख्र, तकब्बुर, किसी के चार बेटे हों फिर देखिए जरा उसकी गर्दन, फिर दूसरों को कुछ समझना ही ना, फिर उनकी गलत तरबियत, फिर उनका बिगाड़, फिर उनको माल कमा के देते जाना और खुद वक्त ना देना। आज के दौर में किसको नहीं पता कि माल और औलाद के हाथों बंदा कहाँ जलील होता है, और जब ख़ास तौर पे इनकी तरबियत ना की जाए। अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायात का खुलासा है कि कुर्बे कियामत औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि बे औलाद शख्स को लोग रश्क से देखेंगे, कहेंगे तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारी औलाद ही नहीं। यानी जिसकी औलाद नहीं है ना, उसका एक ही गम होगा और वो भी उसको कोई नहीं लगता, दूसरों को लगे तो फिर लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी औलाद है उसके 100 गम। आज देखिए हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे दिमाग का सुकून, खुशी कहाँ गया, किधर लेकर फिर रहे हैं हम अपने गमों को औलादों के पीछे। औलाद तो इम्तिहान का पर्चा है, सीधी सी बात है। अल्लाह ने जो दिए उनकी हिफाजत करे, उनके दीन को सलामत रखे, उनको बेहतरीन सदका जारिया बनाए, उनकी दीन दुनिया की खुशियां बहारे आपको देखना नसीब करे। लेकिन सिर्फ इनमें खो के और फिर इनके हाथों मजबूर होते हैं। हर मोहब्बत गम देती है और औलाद तो हमेशा बंदे को कमजोर करती है। अल्लाह के नबी अपने मिंबर पे खड़े खुतबा दे रहे हैं और इतने में हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा खेलते खेलते गिर पड़े, दोनों में एक या कोई एक लंबी सी कमीज पहन ही पाँव में उलझी गिर गए। अल्लाह के नबी भूल गए कि मैं खुतबा दे रहा हूँ, बेसख्तगी में अपने मिंबर से उतरे और जाके बच्चे को उठा लिया, चुप कराने लग गए। और जब लगा कि ये क्या हुआ तो फिर वही कहा कि नवाम फितना, आजमाइश है, प्यार भरी आजमाइश है, बड़ा मीठा जहर है ये दिलों में रहते हैं, इनको दिलों से निकाल दीजिए, आंखों में रखिए, इनको अल्लाह के रस्तों में लगाइए। अल्लाह ना करे किसी वक्त कोई अचानक मामला हो तो सुकून और खुशी के साथ इनको रुख्सत कर सके और अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दे। और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला किस तरीके से ये सारी बातें फरमाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल मुज़िल रोज़े महशर ज़िल्लत और रुसवाई का किस तरह का सामान करेगा। इसके लिए तो इंसान का बहुत बड़ा दिल हो तो फिर ही सुने, उस दिन किस तरीके से ज़िल्लत और रुसवाइयाँ आने वाली हैं। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, बहुत सारी आयतें हैं, हल्की सी आयत आपके लिए लिखी है, सूरह साफ़ात 22-23। उख्शुरुल्लज़ीना ज़लमू वअज़वाजहुम वमा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़हदूहुम इला सिरातिल जहीम। हुक्म होगा घेर लाओ सब जालिमों को और इनके साथियों और इन माबूदों को जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे, फिर इन सब को जहन्नुम का रास्ता दिखाओ, खेर खार के जहन्नुम में लाया जाएगा। और वो सारी आयतें आप इधर लिख रहे हैं जो जहन्नमियों के साथ मामला होने वाला, रोएंगे चीहेंगे चिल्लाएंगे और उनको खाना जरी का मिलेगा और उनको वहां संगलियों में डाला जाएगा। सुम फी सिलसिला तिनजर उहा सबू नजीरान फसलुकू, फिर इनको 70-70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दो। और एक जगह सूरह दुखान की आयत मुझे याद आ रही है, जुक चक तू बड़ा इज्जत वाला बनता था, यानी वो हर मुमकिन तरीका जिससे किसी को कोई ना कोई जिल्लत महसूस होती है, जहां इंसान को पता चलता है कि मैं तो अपने बस में भी नहीं हूं। तो याद रखिए जिस तरह अलमोइस ने हमें इज्जत दी थी इस्लाम के बदले में, इसी तरह अलमुज़िल इस्लाम को कदमों के नीचे रखने में जलील भी करेगा। ऐसे लोग फिर दीन दुनिया दोनों से अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। और हकीकत यह है कि जितना ज़्यादा आप अलमुज़िल पे गौर व फिक्र करते जाते हैं, उतना आपको दुनिया और आखरत की रसवाई का डर लगता है। इसी तरह इस नाम से मुतल्लिक कुछ अहादीस को भी देख लेते हैं। पहली रिवायत हज़रत हुसैन बिन अली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रफ़त व इज़्ज़त वाले उमूर पसंद करता है और ज़िल्लत और ज़लालत वाले उमूर को ना पसंद करता है। ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2740। यानी अपने लिए कभी भी कोई मीन और थर्ड क्लास और सब स्टैंडर्ड काम नहीं चूज़ करना चाहिए किसी मामले में। अक्सर लोग सवाल करते हैं ये काम जायज़ है ऐसे, तो सीधा सा जवाब है कि मैं तो नहीं करूँ ये। जिसका जितना तकवा उतना बड़ा काम करेगा। अब देखिए बस वो हलाल काम होते हैं उसमें भी कोई ना कोई ऑप्शन आ जाती है। मतलब किसी का ग्रोसरी स्टोर है तो अब आप उधर शराब बेचें, नहीं, अच्छा नहीं सिगरेट बेचें, सोचना पड़ेगा। अच्छा वहाँ लॉटो रखें, अच्छा वहाँ पिक का सैंडविच भी है क्योंकि ड्राइवर आते जाते खाना लेते हैं, नहीं आप अपने लिए कभी जिल्लत और जलालत वाले काम पसंद ना करें। बस आप देखिए बिलफर्ज, अल्लाह ताला तो मुसलमान भाइयों को महफूज रखे इसे, लेकिन अगर किसी के कारोबार में शराब है क्या कहेगा? यानी एक बूढ़ी माँ के पास बेटा आता है और कहता है कि अम्मा दुआ करो मेरी दुकान चल जाए, तो अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे बेटे की शराब बिके, अल्लाह बड़े लोग दुनिया में शराब पिए, अल्लाह शराब पी के गुलगपाड़ा करें और शराब के साथ जो बेहयाइयाँ और बेहूदगियाँ और गंदगियाँ वो करें, ये दुआ मांगे आपकी अम्मा। ये है जिल्लत वाले काम। आप अपने मर्दों के अंदर का वो तकवा खोल दें, कभी भी गंदी चीज़ नहीं बेचेंगे। गंदी मूवीज वीडियोस, अब कोई वीडियोस बनाता है, कोई कह लें कि बेपर्दगी और बेहयाई के काम करता है, कोई न्यूडिटी में है, क्या ये इज्जत वाला काम है? किसी को क्या बताएंगे मेरा बेटा ये कमाता है, मेरे घर में ये कमाई आती, ये जो मैंने आपको जूस पिलाया ये इन पैसों कह के इसे किसी की इज्जत खराब हुई और उससे ये पैसा आया। कभी जिंदगी में वो काम ना करें। और याद रखिएगा जिल्लत वाले कामों में आदत भी है, गीबत, तंज, ताना, तशनी, चप चप बोलना और लोगों की बुराइयां करना और फेसेस बनाना, ये सब चीजें जिल्लत वाली। आपने एक टैटूज बना लेना, आप ये हाथों में जो टैटूज बन जाते हैं, मैं एक ऐसे चे के बारे में जानती हूँ कि जो भी टैटूज बने अब वो टैटू तो उसके कैरियर के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, उसको आर्मी में जाना है और आर्मी में उसको नहीं लेंगे और वो टैटूज अनरिमूवेबल है। वो खुद कहता है कि उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, अपना पूरा कैरियर तबाह कर दिया सिर्फ टैटूज बनवा के। तो ऐसे कामों से बचना चाहिए। और इसी तरह से याद रखिए कि जिल्लत और आग का लिबास तैयार है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में खराबियां की। कैसे? अबू दाऊद की रिवायत है 4030, आपने फरमाया अल्लाह ताला उसे क्यामत के दिन जिल्लत का कपड़ा पहनाएगा जिसने शोहरत और नामवरी का लिबास पहना। अल्लाह माफ करे, ये बुराई तो औरतों में ज्यादा होती है, शोहरत। मेरा जोड़ा ऐसा, देखिए कपड़े लोग पहले भी पहनते थे पर इस तरह सज के संवर के नहीं, बखर होकर बैठे रहते थे, अपने लिए पहनिए। और एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि जिसने शोहरत के लिए कपड़ा पहना क्यामत के दिन उसको खुजली का अजाब होगा, यानी मैदाने महशर में उसको खुजली होगी, ख़ारिश। भला क्यों? आप देखिए ना दिल क्या करता है, ये कपड़े पहने तो लोग हमें देखें, ख्वाहिश तो यही होती है ना, वॉक है तो जो ख़ारिश करेगा उसको सब नहीं देखेंगे, नुमाया होना है ना, ऐसे हो जाओ। अपने लिए पहनिए लिबास, किस लिए क्यों पहनना है? तो अल्लाह ताला हमें दूसरों को जलाने के लिए ना करे। वैसे कोई किसी को जलाए तो कितना गैर मुहज्जब काम है, और लोग कहते हैं जल के राख हो गई मेरी बेटी का जोड़ा देखकर, बोल ही ना सकी। मेरा जोड़ा ऐसा कोई बने कि कोई देखे तो बस बेहोश ही हो जाए। फिर इसी तरह एक और रिवायत है सही मुस्लिम 7476, आपने फरमाया जो शख्स लोगों को सुनाने के लिए नेक काम करेगा यानी रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए शोहरत चाहेगा, चलिए अल्लाह ताला भी क्यामत के दिन इसकी जिल्लत लोगों को सुना देगा, और जो शख्स रिया करेगा अल्लाह ताला भी इसको दिखलाएगा, यानी जो दुनिया में शौफ करेगा ना क्यामत के सबके बीच में उसकी बेइज्जती होगी कि ये देखो ये था वो जो दिखावे के काम करता था। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम युराउन व यमनउन अलमाउन, बुरी चीजों के बुरे नतीजे। फिर इसी तरह सिलसिला सहीहा की रिवायत है 1068, आपने फरमाया जब तुम बै ईना करोगे, बैलों की दुमे पकड़ लोगे, खेती बाड़ी को पसंद करोगे और जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत मुसल्लत करेगा और इस वक्त तक इसको दूर नहीं करेगा जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस नहीं लौटाओगे। है आज के दौर के मुसलमान की कहानी। हमें अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद नहीं चाहिए क्योंकि मसरूफ बहुत है, जिसको जो प्रोफेशन मिला वो उसी में नाम बनाने में लग गया। अपने फराइज पूरे हो जाए तो बड़ी बात है, बाकी बातों की तो क्या बात है। इसी तरह हजरत आयशा ने कहा कि हिंद बिन उतबा अबू सुफियान की बीवी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम लाने के बाद हाजिर हुई और कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूए जमीन पर किसी घराने की जिल्लत आपके घराने की जिल्लत से ज्यादा मेरे लिए खुशी का बायस नहीं थी, लेकिन आज किसी घराने की इज्जत रूए जमीन पर आपके घराने की इज्जत से ज्यादा मेरे लिए खुशी का बायस नहीं है। जी आपने फरमाया इसमें अभी और तरक्की होगी, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। फिर हिंद ने कहा या रसूलुल्लाह अबू सुफियान बहुत बखील हैं, यानी दिल के तंग हैं, तो क्या इसमें कुछ हर्ज है अगर मैं इनके माल में से इनकी इजाजत के बगैर बाल बच्चों को खिला दिया करूं और पिला दिया करूं? आपने फरमाया हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दस्तूर के मुताबिक होना चाहिए, यानी अब ये नहीं कि तुम उस पर ज्यादती करने लग जाओ और ज्यादा ही ले लो, और रुख्सत भी दे दी लेकिन नपे तुले अंदाज से। और ये बुखारी की रिवायत है 3825, तो क्या पता चला कि दुनिया में भी कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि शौहर अपनी बीवियों को जलील कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, उनकी बात की इज्जत नहीं करते। तो ऐसी सूरत में फिर इंसान डरते डराते काम करे अल्लाह ताला की रहमत से। फिर इसी तरह अलमुज़िल से मुतल्लिक कुछ दुआएं और अज़कार अगर हम देखें तो बहुत ही वो प्यारे अज़कार हैं, और अब तो लगता है आपको दुआ कनूत याद करनी ही पड़ेगी अल्लाह की रहमत से। अल्लाह अहदिनी फ़ी मन हदईत, वाफ़िनी फ़ी मन आफ़ईत, व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत। इसी तरह से एक और बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क्र व आऊज़ु बिका मिनल क़िल्लति व ज़िल्लति। ये ज़िल्लति को हाईलाइट कीजिएगा, ये है लफ्ज़। व आऊज़ु बिका अन अज़लिमा औ उज़लमा। ए अल्लाह, मैं फ़क्र और ग़ुर्बत से तेरी पनाह मांगता हूँ, कमी और ज़िल्लत से पनाह मांगता हूँ, जुल्म करने और जुल्म किए जाने से तेरी पनाह मांगता हूँ। सुनन निसाई 5462। यानी ना मैं किसी पे ज्यादती करूँ ना कोई मुझ पे करे, और ए अल्लाह तू मुझे दुनिया में भी जलील ना करना। बाज़ अब आप देखिए स्कैंडल्स बन जाते हैं, गलत फहमियाँ फैला दी जाती हैं, गलत प्रोपेगंडा होता है, तो हर चीज़ की दुआ किया करें। और फिर आपकी मेरी प्यारी पसंदीदा दुआए कनूत, इसको याद कीजिए, इसके लफ्ज़ भी बहुत प्यारे हैं, और जो अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं ये तिरमिज़ी की रिवायत है 464। किसी ने सवाल भी किया था कि हम दूसरी एक दुआ मांगते हैं अक्सर जिसमें अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका के अल्फाज आते हैं, तो देखिए वो दुआ हज़रत उमर मांगते थे, और ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई ना। एक रिवायत आपको सुनाई थी पीछे, हज़रत अली को आपने सिखाई थी। तो बहरहाल इसके अल्फाज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तर्जमे पर गौर करेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ी मन हदईत, वाफ़िनी फ़ी मन आफ़ईत, व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत, व बारिक ली फ़ी मा आतईत, वकिनी शर्र मा कदईत, फ़इन्नक तक़दी व ला युक़दा अलैक, व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, तबारकता रब्बना व तआलैत। ए अल्लाह मुझे हिदायत दे। देखिए इतना प्यार है इस दुआ में, लाड जैसे नहीं होते, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदई, जैसे बच्चा कहता है ना मामा आपके पास जो पैसे हैं ना उसमें से मुझे पैसे दें, वो जो कुकीज़ हैं उसमें से मुझे कुकीज़ दे। बंदे को यकीन है कि अल्लाह के पास सब कुछ है, तो क्या कहता है, अल्लाह मुझे हिदायत देकर इन लोगों के ज़ुमरे यानी गिरोह में शामिल फरमा जिन्हें तूने हिदायत से नवाजा, मुझे आफ़ियत देकर इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने आफ़ियत बख्शी है, मेरी सरपरस्ती फरमा कर इन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तूने सरपरस्ती की है, और जो कुछ तूने मुझे अता फरमाया इसमें बरकत अता फरमा, और जिस शर का तूने फैसला फरमा दिया है इससे मुझे महफूज रख। देखिए इतनी प्यारी लगती है ये बात मुझे, हमें तो नहीं पता ना कि हमारी तकदीर में अगले ही लम्हे क्या गम है, क्या दुख है, बीमारी है, पाँव स्लिप करेगा, चोट लगेगी क्या। तो आप कहते हैं अल्लाह वो जो तूने मेरे लिए रखा है जिसका मुझे नहीं पता तो उसको दूर कर दे, यकीनन फैसला तू सादिर फरमाता है, तेरे खिलाफ फैसला सादिर नहीं किया जा सकता, और जिसका तू वाली हो वो कभी जलील व ख्वार नहीं हो सकता। ऐ हमारे रब, तू बहुत बरकत वाला और बहुत बुलंद वाला है। तो याद ना भी हो तो शुरू में आप देख के भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी दुआ है, और मानी पे गौर करें तो बहुत जल्दी याद हो जाती है ये दुआ। इसी तरह सलफ़ सालेहीन की भी कुछ बातें ले लेते हैं अलमुज़िल लफ्ज़ के बारे में। हज़रत उमर का कौल, हम एक जलील कौम थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम की बदौलत इज़्ज़त अता फ़रमाई, जब भी हम इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। सच समझ आ गई ये बात। आज हम मुसलमान किस चीज़ में इज़्ज़त तलब कर रहे हैं, क्या इस्लाम में, क्या इस्लाम पे अमल पे, क्या इस्लाम को फैलाने में, क्या इस्लाम का झंडा लेकर दुनिया में लहराने में? ना ना, आज हम इज़्ज़त दौलत में, माल में, तालीम, आज का बुत एजुकेशन, आज का बुत मादा, मैटर, मटीरियलिज्म, इससे बढ़ के और क्या कहूँ। इसलिए याद रखिए कि अलमुज़िल को जानने के बाद अलमौइज़तुल हसना यानी अपने दिल को नरम करने की बात क्या है, अमल की बातें, इस बात का यकीन रखना है कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, लोगों से इज्जत नहीं मांगनी, और इस बात का भी यकीन रखना है कि जिल्लत से बचाने वाला अल्लाह है, तो फिर उसी की बात माननी है। फिर इसी तरह आर्जी दुनिया की इज्जत के बदले हमेशा की जिल्लत नहीं लेनी, क्या फ़ायदा, किसी को कहा जाए एक रात के लिए बादशाह बन जाओ, कल से तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, मानेगा कोई? आज जो खाना है खा लो, कल से बीमार होकर बिस्तर पे पड़े रहो, कोई भी नहीं चाहेगा। तो हम इतने ना समझ तो नहीं है कि 4 दिन की दुनिया बनाते बनाते ना ख़त्म होने वाली आखिरत को ख़त्म करें, और हम फीका खालिदून, खुल्द की ज़िंदगी है वहाँ। फिर इसी तरह बहुत ही कमजोर होता है वो बंदा जो दूसरों के ऐप खोलता है। तो हमने लोगों के ऐबों की पर्दापोशी करनी है और ख़ास तौर पे सिला रहमी करनी है। फिर पहली उम्मतों को भी सिला रहमी का हुक्म दिया गया था, हमें भी सिला रहमी करनी है, क्योंकि जिल्लत से बचा लेता अल्लाह उस बंदे को जिसके साथ उसके रिश्तेदारों की दुआएं होती हैं। वालदैन के साथ हुस्ने सलूक कीजिए, कराबतदारों को बहाल रखिए, कतई रहमी से बचने की कोशिशें कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने बारे में मुतफक्किर रहिए, अपनी फिक्र कीजिए कि हम कौन हैं क्या हैं। बहुत जगह हम अल्लाह ताला के इस नाम को भुलाकर अपने ऊपर जुल्म करते हैं। याद रखिए कि आज हमारे यहाँ दीन के हाल हुलिये के ऊपर लोगों का क्या तसव्वुर आता है। दाढ़ी काट दो, दाढ़ी रखी तो जॉब नहीं मिलेगी। कुछ मिथ्स हैं हमारे, चंद चीज़ें रैंडमली आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। यानी बाज़ लोग कहते हैं दाढ़ी रखी तो जॉब नहीं मिलेगी, पर्दा किया तो ये नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा। तो एक वाक्या किसी का सुनाया हुआ, लंदन में रहते थे, मुलाजमत की तलाश में थे, इंटरव्यू देने गए, चेहरे पे दाढ़ी थी। तो जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि देखिए जी, दाढ़ी के साथ यहाँ काम करना मुश्किल है, आपको जॉब नहीं मिल सकती। खैर, ये वापस गए, सोच में पड़ गए क्या करूँ, इधर करूँ, कशमकश थी, दूसरी जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगार है, परेशान है। याद लेके रिस्क के हाथों बहुत सारे लोग जलील हो जाते हैं, कई अपने कह लीजिए वादे तोड़ देते हैं, अपने असूलों को तोड़ देते हैं। खैर, फैसला किया कोई बात नहीं, दाढ़ी है ना फिर रख लूँगा, कटवा दूँ जॉब तो मिल जाए। दाढ़ी कटवाई, उसी जगह मुलाजमत के लिए पहुँच गए। उन्होंने पूछा सुनाइए कैसे आना हुआ। कहा इसलिए कि आपने कहा था दाढ़ी कटवा दो, तो मैं आपके दाढ़ी के साथ आया था, आज मैं उसके बगैर आया हूँ। उसने कहा आप मुसलमान हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या आप दाढ़ी को ज़रूरी समझते हैं? कहा हाँ। कहा इसलिए तो रखी थी। कहा अच्छा, ये बताइए कि ये अल्लाह का हुक्म है, उसकी वजह से रखी? उन्होंने कहा हाँ। कहा सिर्फ मेरे कहने पे आपने अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया? इसका मतलब है कि आप वफादार नहीं। और जो शख्स अल्लाह का वफादार ना हो वो अपने अफसर का वफादार कैसे हो सकता है? तो लिहाजा बेवफा शख्स को हम मुलाजमत पे नहीं रख सकते। इसको कहते हैं खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। सिर्फ दाढ़ी नहीं, अल्लाह के जितने हुक्म है हर एक को देखे, लोगों के मजाक उड़ाने के डर से अपने आप को पीछे न रखे। इस तरह औरतें कहती नहीं मासी लगती हो, बड़ी लगोगी, उम्र से बड़ी लगती हो, पर्दा नहीं करना, अनपढ़ लगती हो। आज क्या सच बताइए, मैं माइंड नहीं करूंगी, आप मेरी बात से बेशक डिफर कीजिए, आपकी बेल बजे और आपके सामने एक बड़ी मॉड स्कॉट औरत खड़ी हो, उनसे बात करने और उनके लिए ड्राइंग रूम खोलने और ख़ास तौर पर वो इंग्लिश भी बोलें और कीमती सा पर्स उनके हाथ में हो, और इसके बरक दरवाज़ा खोलें और शरई हिजाब में खड़ी एक औरत, क्या आपका दोनों को प्रोटोकॉल एक ही जैसा होगा? सहाबा की इज्जत इसलिए थी, सहाबियात की इज्जत इसलिए थी कि अलमोयज़ और अलमुजिल के दिए हुए अहकाम पर उन्होंने अमल किया। आज हमने चूके छोड़ा, आज ये जो वेस्ट में प्रोपेगंडा हो गया ना नबी की तस्वीरों का और कार्टूनों का, ये हमारे मुंह पे थपेड़े हैं। अल्लाह ऐसे मुसलमानों को जलील कर देते हैं जिनको खुद अपना दीन अच्छा नहीं लगता। आज तो कोई जवान बच्चा दाढ़ी रख के 4-6 दिन फेरे, लोग कहते हैं ये क्या कार्टून बने हुए हो, क्या हो गया, जाओ डिप्रेशन हो रहा है तुम्हें देखकर। जब हमारे दिलों में ये इतमाद होगा ना कि अल्लाह और उसके रसूल के सिखाए हुए तरीकों पर अमल करके इज्जत है, फिर देखिए फाइनल इज्जत लिल्लाह जमीअ। कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाए, ताने देता है तो दे। ये ताने तो मुसलमानों के गले का जेवर होते हैं। अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, क्या उन्होंने कुछ कम ताने सुने थे? और हर दौर के नबी को देख लीजिए, यही ताने मिले, ये कमज़ोर लोग हैं, इसके फॉलोअर बड़े पीछे हैं, ये तो बड़े ऐसे हैं, ज़िंदगी की राखते नहीं हैं। और अंबिया कराम में कॉन्फिडेंस था, सहाबा में यही कॉन्फिडेंस था। तो लिहाजा जिल्लत और इज्जत का मेयार जब अल्लाह और उसके रसूल को बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें कोई जलील नहीं कर सकेगा। बाकी ये चंद चीज़ें कि हमारी इज्जत कोई नहीं करता घर में बाहर, बस लोग कहते हैं कि जी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, ससुराल वाले नहीं करते, तो ये बात याद रखिएगा, आप खुद मौका देते हैं। जब आप लोगों को मौका देंगे ना कि आपकी इज्जत ना करें, एक ही घर है, दो बहुएं हैं, घर वालों के दोनों के साथ मुख्तलिफ रवैये हैं, एक स्ट्रांग है और लोग उनकी इज्जत भी करते बात करते हैं, दूसरी बेचारी किचन से ही नहीं निकल आती। वजह, ये दूसरी ने खुद कहा कि मुझे आप इस तरह का बिहेव करें। एक मर्द की बात दफा दो बीवियां हैं, एक का बहुत ख्याल रखता है, एक का नहीं रखता। तो लिखिए एक बात, लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने मौका दिया है उनको इस बात का कि मेरी इज्जत ना करें। फिर एक और चीज़ है कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं लोग, पटियां पढ़ाते हैं माँ बाप भी, जरा मजा चखाना, जरा इसको ठीक कर दो, अपनी जिंदगी से ही लफ्ज़ निकाल दें, आपकी जिल्लत खत्म हो जाएगी। दो गलत काम मिलकर ठीक नहीं हो सकते। फिर इसी तरह समटाइम हम सबक सिखाने की कोशिशें पड़ जाते हैं, कोई बंदा जरा सम पे बुरा करे, हम कहते अब देखना जरा, दिमाग पर सवार हो जाता है। किसी के साथ भी ऐसा कोई मामला करना, नेगेटिव बिहेवियर, मनफी रवैये कभी खैर नहीं लाते। आपको इज्जत करनी आनी चाहिए, इज्जत करानी आनी चाहिए। आप जब दूसरों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, तो उसका नुकसान यही होता है। और फिर होता क्या कि आप मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कभी किसी मौके का फ़ायदा उठाकर ना किसी की गइबत करें, ना उससे बदला लें, ना खरी खरी सुनाएं, ताने ना दें। जितना आप अपना किरदार ऊपर करते जाएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। फिर इस तरह हम अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों के सामने एक माँ हर वक्त रोती जुरेगी, तो बताइए वो बच्चे कितनी को इज्जत करेंगे। बीवी शौहर के सामने रोएगी तो क्या होगा, तो बस वो एक हस्ती है जिससे इज्जत मांगी है। इज्जत भीख से नहीं मिलती, याद रखिए, ये तो मोहब्बतों की तरह मिलती हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत से मिलती हैं। तो ये था अल्लाह ताला का प्यारा सा नाम अल मुज़िल। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।